नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में वीवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
The message I shared then at VivaTech 2021, where convention fails, innovation can help. India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात कर विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत न केवल भविष्योन्मुखी तैयारी कर रहा है बल्कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और लोकहित आधारित विकास के जरिए उसे सक्रिय रूप से संवार रहा है। श्री मोदी ने फ्रांस यात्रा के आखिरी कार्यक्रम पेरिस में बोंजूर मोदी आयोजन में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए भारत में पिछले 12 वर्षों में तेजी से हुए बदलावों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत के सकल घरेलू उत्पाद, हवाई अड्डा नेटवर्क और विश्वविद्यालयों की संख्या दोगुनी हो गई है जबकि मेट्रो कनेक्टिविटी 4 गुना बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब तक 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। प्रधानमंत्री फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल फ्रांस यात्रा के मुख्य नतीजों की जानकारी दी। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने पेरिस में मीडिया को बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा 3 मुख्य स्तंभों, व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित रही। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा सचिव संतोष कुमार सारंगी ने कहा है कि सुदृढ़ नीतिगत ढांचे और सरकार की नवोन्मेषी पहल से भारत विश्व के प्रमुख नवीकरणीय ऊर्जा देशों में से एक बन गया है। नई दिल्ली में 10वीं हरित और सतत विकास साझेदारी परिचर्चा श्रृंखला में नवीकरणीय ऊर्जा के जरिए ऊर्जा सुरक्षा पर अपने संबोधन में श्री सारंगी ने ये बात कही। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने कहा है कि युद्ध समाप्त करने के समझौते के तहत अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों पर दर्जन से अधिक जहाजों को पारगमन की अनुमति दे दी है और वहां से नाकाबंदी हटा ली है। श्री वैंस ने व्हाइट हाउस प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि अब हॉर्मूज जल डमरू मध्य से तेल की अधिक आवाजाही हो रही है। उन्होंने कहा कि ईरान समझौते पर बातचीत के लिए उनके स्विट्जरलैंड जाने की योजना है। उनसे उम्मीद की जा रही है कि वो ईरान के साथ शांति समझौते लागू करने में बातचीत का नेतृत्व करेंगे। अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में फीफा विश्व कप 2026 के ग्रुप ए के मैच में चेकिया और दक्षिण अफ्रीका का मुकाबला 1-1 से बराबरी पर रहा। इससे दोनों टीमों के नॉकआउट स्टेज में पहुंचने की उम्मीद है। इसके बाद अमेरिका के लॉस एंजलिस स्टेडियम में ग्रुप बी के मैच में भारतीय समयानुसार रात 12:30 से स्विट्जरलैंड का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। उधर चीन के ग्वांगडोंग में विश्व टीम स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाते हुए भारत ने मौजूदा चैंपियन हांगकांग चीन को 3-1 से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।